لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما للإمام المنتظر، أجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرآنه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وقال بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إنا شانئك هو الأبتر. ففٹینتھ آف رمضان اسلامی کیلنڈر کی وہ تاریخ ہے جو آپ ایسے ہر ایک کو پتا ہے، جس کی وجہ سے آپ آج یہاں تشریف لائے ہیں. آقا حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی ولادت کی وہ تاریخ جس کے حوالے سے دو تین پیغامات میں اپنے اسٹائل اور انداز میں دینا چاہتا ہوں. اس انداز کا جشن میں پڑھ تو سکتا ہوں اور میں نے بہت پڑھے بھی ہیں، لیکن ویسٹرن کنٹریز کے مخصوص حالات میں جہاں ہر سیکنڈ ہمارے بچوں کا دین اور ایمان خطرے میں ہے، ہمیں کچھ باتوں پہ بہت سیریس غور کرنا ہے، تو انداز جشن کے تقریر میں بھی ذرا سا مختلف ہوتا ہے. پہلی بات میں یہ عرض کر دوں کہ ہمارے یہاں ایک عید بہت مشہور ہے جس کا نام ہے عید زہرا. پہلے ہم لوگ اسے نو ربیع الاول اور ابھی بھی نو ربیع الاول کا جشن کہتے ہیں، بہت پہلے اسے عید شجاع کہا جاتا تھا اور مختلف نام دیے جاتے ہیں، لیکن اب نو ربیع الاول کی تاریخ کو کہا جاتا ہے عید زہرا. یہ شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کی خوشی کا دن ہے، یہ خوشی کی تاریخ ہے، اور اس کی دو اہم وجوہات یہ بتائی جاتی کہ پہلے تو یہ ہے کہ امیجیٹ عید کربلا کے جو بڑے بڑے ظالم اور قاتل ہیں، عمر سعد وغیرہ، ان سب کے کٹے ہوئے سر آئے تو اہل بیت نے سوگ بڑھایا اور عید منائی، تو وہ عید و زہرا ہے. اور دوسرے اس لیے کہ جو صحیح معنوں میں اہل بیت پہ ظلم کرنے والے، جن کے لیے بار بار روایتوں میں آیا ہے الممہدین لہم، وہ یزید اور شمر اور ان سب کو کس نے اتنی طاقت دی کہ اس نے آقا حسین اور خاندان رسالت کے خلاف اتنا ظلم کیا، ہیں کچھ لوگ پیچھے، تو ان سے انتقام لینے والا جو زمانے کا امام ہے، اس کی امامت کا پہلا دن بھی نو ربیع الاول. صحیح معنوں میں اصلی انتقام تو وہ لے گا، مختار نے کیا انتقام لیا، اصل انتقام تو زمانے کا امام لے گا اور زہرا کے دل کے خوشی کا سبب بنے گا، اس لیے امام زمانہ کی امامت کا پہلا دن عید الزہرا. یہ دو وجوہات بتائی جاتی ہیں نو ربیع الاول کی عید الزہرا کی مناسبت، کہ کیوں اس کو عید الزہرا کہتے ہیں. لیکن اگر ہم تاریخ اسلام پر نگاہ ڈالیں تو صحیح معنوں میں عید الزہرا جو ہے وہ آج کی رات ہے 15 رمضان. صحیح معنوں شہزادی کونین وہ پرسنالیٹی ہیں یا وہ ذات ہیں یا وہ شخصیت ہے کہ اپنی ولادت سے لے کر 15 رمضان کی یہ تاریخ آنے تک مسلسل مصیبتیں، مسلسل پریشانیاں، مسلسل غم ایک کے بعد ایک شہزادی کی زندگی کا. اب وہ جو دنیاوی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے ولادت کے بعد، بلکہ ولادت سے بھی پہلے جب ماں کے پیٹ میں تھی، شہزادی فاطمہ کا ایک ٹائٹل ہے محدثہ، وہ اپنی ماں سے باتیں کرتی تھی، تو ماں سے تو ہر ایک بات کرتا نہیں، کہا کہ نہیں، جب وہ ماں کے پیٹ میں تھی، وہ زمانہ جسے زیارت وارثہ میں ہم کہتے ہیں کہ اشہد انک کنت نورا فی الاسلام شامخا والارحام المطہرہ، جب شہزادی وہ پاک اور پاکیزہ رحم مادر میں ہیں، اس وقت سے अपनी माँ से बातें कर रही हैं। क्यों? क्योंकि उनकी माँ इतना गमगीन है, पैगंबर पर रोजाना जुल्म ढाई जा रहे हैं, खदीजा ताहिर अकेली है घर के अंदर, रोजाना पैगंबर के जख्मों को देखती है, रोजाना पैगंबर की परेशानियों को देखती है। अब मेरी लास्ट स्पीच जनाब खदीजा के बारे में थी, वफादार बीवी, गमगीन हो जाती हैं, आंसू बहाती हैं, और फिर जनाब खदीजा की अपनी मुसीबत, सारे मक्के ने छोड़ दिया अकेले, तो फातिमा माँ के पेट से माँ की परेशानियां देख रही, और उसी वक्त से ही वो माँ से बातें कर रही हैं कि मादरे गरामी अगर कोई और नहीं है आपका साथ देने वाला तो ये आपकी बेटी शिकमे मादर से आपका साथ दे रही है। लेकिन एक माहौल तो हम का माहौल बना ना, फिर दुनिया में आई, जिस साल शहजादी दुनिया में आई सन 5 नबूवत, इतना टॉर्चर मक्के वालों ने बढ़ा दिया था मुसलमानों पर कि पैगंबर ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि तुम हबशा इथोपिया हिजरत कर जाओ। हिजरत का हुक्म आया इसलिए टॉर्चर इतना बढ़ गया। अब ये शहजादी दुनिया में आई है और जुल्म और सितम का सिलसिला एकदम बढ़ गया। अभी 2 साल की है कि पूरे खानदान अहले बैत को शेबे अभी तालिब में जाना पड़ा, एक तो वक्त भी नहीं है मेरे पास, और ये मशहूर मशहूर वाकयात, और 3 साल शहजादी शेबे अभी तालिब में रही और वो सारे मुसीबतें और परेशानियां और मसाइब शेबे अभी तालिब से अभी बाहर आए ही थे कि जनाब खदीजा की वफात, और शहजादी फकत 5 साल की, और फिर हजरत अबू तालिब और जनाब खदीजा का एक ही साल इंतकाल करना। अब मक्के के काफिरों को तो खुल खेलने का मौका मिला, अब तो दिल खोल के पैगंबर पर और मुसलमानों पर जुल्म ढाई जा रही। शहजादी के बचपन ही का वाकया है ना कि पैगंबर खाने काबा के सहन में, जो अभी हमने दुआए मुजीर का इंट्रोडक्शन कराया, नमाज पढ़ रहे थे और वो ऊंट की ओझड़ी लाकर पैगंबर के पुश्त पे रखी गई। 5 साल की फातिमा अपने घर से रोती हुई निकली और पैगंबर की पुश्त से इस गंदगी को, नजासत नहीं गंदगी को साफ कर रही। लेकिन ये तो फॉर एग्जाम्पल सिर्फ एक स्टोरी है जो हिस्ट्री में आई है मुसलसल 3 साल कि आखिर में पैगंबर को हिजरत करके मदीने जाना पड़ा, और मदीने जाके कौन से प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। फाकों की ये हालत थी कि हर मुसलमान पेट पे एक पत्थर बांधे है, पैगंबर के पेट पे 2 पत्थर होते थे। फिर एक वक्त आ रहा है खुशी का जिसे कहेंगे शहजादी की शादी, लेकिन कभी तारीख में तफसील पढ़िए, शहजादी की शादी को तो हमने कुछ कसीदों के हवाले इस तरह कर दिया है कि संजीदा गुफ्तगू हम नहीं करते। इतना प्रोपेगेंडा मौला के खिलाफ किया गया कि उसके असरात घर में भी आए, यानी जो फातिमा की रुखसती का दिन था उस दिन फातिमा इतनी परेशान थी कि पैगंबर को सर पे हाथ फेर के बेटी को खास तसल्ली देना पड़ी। तो मुसलसल जिस दिन से फातिमा इस दुनिया में आई है उस दिन से लेकर शादी तक और शादी के बाद भी मुसीबतें ही रही। पहली खुशी जो फातिमा को अपनी जिंदगी में मिली जब 15 रमजान को हसन मुश्तबा की विलादत हो रही है, हर बेटे की विलादत पे माँ खुश होती है और जब पहली औलाद हो शादी के फौरन बाद, लेकिन फातिमा की उम्र के 9 साल गम में गुजरे और हर तरह के प्रॉब्लम आए, फिजिकल टॉर्चर भी हुआ है, मेंटल टॉर्चर भी हुआ है, प्रोपेगेंडा भी हुआ है, घर में फाके वाले प्रॉब्लम भी हुए, सब हुए। सही मानों में जो पहली खुशी फातिमा ने मनाई है वो हसन मुश्तबा की विलादत। आज साहिबान ईमान को वाकई इस तरह की खुशी मनाना चाहिए कि फातिमा की खुशी का हक अदा हो जाए। यह है ईद उज जहरा। सही मानों में फातिमा ने, जहरा ने किस दिन ईद मनाई? जिस दिन हसन मुश्तबा इस दुनिया में तशरीफ लाए। अच्छा, ये एक बात छोटी जहन में रखिएगा, छोटी नहीं बहुत बड़ी बात है, मैं टाइम की वजह से मुख्तसर कर रखा। नंबर 2, जिस दिन से इस्लाम इस दुनिया में आया मुसलमानों पर भी खुशी का कोई दिन नहीं आया। मुसलमानों के लिए भी सबसे पहली खुशी जो थी वो हसन मुश्तबा की विलादत थी। वो कैसे मैंने कह दिया? सुनी है थोड़ी सी ड्राई किस्म की गुफ्तगू, लेकिन ये हसन मुश्तबा की विलादत के मौके पर मदीने का सीन क्या बन रहा है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। हमारे और आपके घर तो बिल्कुल रूटीन लाइफ के मुताबिक, जैसे कल की रात थी वैसे आज की रात हम गुजारेंगे, और जैसे आज का दिन हमने गुजारा कल 15 रमजान का दिन भी वैसे ही होगा, पूरा मदीना इस ईद को सेलिब्रेट कर रहा था। वाय सूरह कौसर। पुराने जमाने में, बल्कि अभी भी, इंडिया और पाकिस्तान और ईस्ट अफ्रीका के कई इलाके ऐसे हैं जहां ट्राइबल सिस्टम है। ट्राइबल सिस्टम में कोई फौज नहीं होती, कोई पुलिस नहीं होती, आपका प्रोटेक्शन है आपका कबीला। अगर आपने कोई जुर्म किया है या कोई आपके अगेंस्ट हो गया है, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई पुलिस नहीं आएगी, पुलिस होती ही नहीं, कोई आर्मी नहीं आएगी, आर्मी होती ही नहीं उस जमाने में। फिर सिस्टम कैसे चलता है शहरों का, फिर लोगों का जान माल इज्जत कैसे महफूज रहती है, फिर चोरियां और डाके क्यों नहीं होती। का ट्राइब, आपका कबीला, हर कबीले वाला अपने हर शख्स का ख्याल रखता है, चाहे वो सही हो चाहे गलत। आज भी यही हो रहा। इंडिया की बात तो मैं नहीं जानता, पाकिस्तान की बात मैं जानता हूं। फुला हमारे कबीले का है, सही है कि गलत है, हमें उसका साथ देना। ये 21st सेंचुरी के अंदर भी ये नेचर, तो 1400 साल पहले तो ट्राइबल सिस्टम में। फिर याद रखिएगा, ना कोई आर्मी होती थी पहले, ना कोई पुलिस होती थी, स्पेशली अरब दुनिया में। वहां तो सिर्फ और सिर्फ आपका प्रोटेक्शन है, आपका कबीला। चुनांचे आपको वाकयात भी मिलेंगे कि कुछ लोग अगर अपने कबीले से अलग हो गए और मक्के में आए, तो मक्के के जो कबीले उनमें से किसी से कहा कि हमें अपने अंदर शामिल कर लो, जैसे आपको ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप मिलती है, वो कबीला उसको अपने अंदर शामिल करता था। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग वाकयात है, टाइम मेरे पास नहीं होता। तो ट्राइब, आपका कबीला, वो आपका प्रोटेक्शन। अगर आप किसी कबीले का पार्ट है तो आपकी जान भी महफूज है। सही तो सही, आप गलत काम करके भी आ जाए, आपका कबीला आपको बचाएगा। अगर आपका किसी कबीले से ताल्लुक है तो आपका माल भी महफूज है। अगर आपका कबीले से ताल्लुक है तो आपकी इज्जत और आपकी बेटियों की इज्जत महफूज। और अगर कबीले ने निकाल बाहर किया आपको, तो फिर कोई आपको प्रोटेक्शन देने वाला नहीं। अब बहुत इंटरेस्टिंग वाकयात है, टाइम नहीं है और शायद आज अच्छा भी नहीं लग रहा। अब जब मुसलमान शुरू हुए, यानी इस्लाम आया और लोग मुसलमान होने लगे, तो ऐसी तो कोई एग्जाम्पल नहीं है कि पूरा ट्राइब एक साथ मुसलमान हो गया। हर कबीले में एक आदमी मुसलमान होता है, दो आदमी मुसलमान होते हैं, पूरा कबीला उनका बाइकाट कर देता है। इसी माह मुबारक में, शबाए कदर में आप सूरह अनकबूत की तिलावत करेंगे। सूरह अनकबूत इसी कॉन्टेक्स्ट में नाजिल हुआ। हर कबीले ने कहा कि तुमने हमारा मजहब छोड़कर ये नया मजहब इख्तियार किया, जिसकी खास बात यह है कि हमारे खुदाओं को बुरा कहा जा रहा है। तबर्रा इस्लाम का बहुत अहम जुज है, उस तरह का नहीं जो आज बना दिया गया, लेकिन है ना, ला इला, सारे खुदाओं का इंकार हो रहा है। हमारा लात, हमारा मनात, हमारा हुबल, ये सब कहां गए? तुमने उस मजहब को इख्तियार किया, हम तुमको अपने कबीले से निकाल रहे हैं। अब ये रह गया अकेला। लेकिन अब क्योंकि हर कबीले से एक एक दो दो, एक एक दो दो निकले, तो ये खुद मुसलमान खुद अपनी जगह एक छोटा सा ग्रुप बन गया। कुरैश बार बार एक ही जुमला कहते थे, प्रोपेगेंडा। असल में मेरा आज का मौजू था प्रोपेगेंडा, क्योंकि सबसे ज्यादा मासूमीन में से जिसके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया वो इमाम हसन है। वहां तक मुझे जाना, प्रोपेगेंडा। और प्रोपेगेंडे को दूसरे अल्फाज में कहूं, 1400 साल पहले का यूट्यूब, 1400 साल पहले का व्हाट्सएप, 1400 साल पहले का ये ट्विटर, वो पूरा मीडिया। अल्लाह करे मैं वहां तक पहुंच जाऊं, इसलिए कि बातें मैं फैला भी रहा हूं और फैलाना जरूर। हर कबीला जो मुसलमान होता है, देखिए अगर पूरा कबीला एक साथ मुसलमान हो या 80% लोग मुसलमान हो, तो कौन किसको निकालेगा? लेकिन एक आदमी मुसलमान हुआ, सबने उसको बाहर निकाला। अच्छा, अब ये एक एक दो दो सब जमा हो गए, इनकी अपनी एक छोटी सी जमात बन गई। लेकिन बार बार मक्के वाले इनको एक ही थ्रेट कर रहे हैं। वो क्या थ्रेट कर रहे हैं? तुमने हमको छोड़ दिया, नए रिलीजन पे चले गए। कितने दिन का ये रिलीजन है? तुम जिसका कलमा पढ़ रहे मोहब्बत मोहम्मद, वो 40+ तो हो ही चुका है, और अरब के जमाने के एवरेज एज के इतबार से 50-55 एक अच्छी एज मानी जाती थी पूरी दुनिया की। आज जाइए विकिपीडिया और देख लीजिए कि दुनिया में पहले एवरेज एज क्या होती थी। अलेक्जेंडर द ग्रेट 25 साल का था खाली, क्योंकि उस वक्त एवरेज एज 25 साल थी, 25 है, तो 50-50+ ये इनफ है अरब में। क्या ये कितने साल और जिंदा रहेगा? अब इसके बाद तुम्हारा क्या होगा? अभी इसने तो तुम सबको जमा करके रखा है, जब ये मर जाएगा, चलो अगर इसका कोई बेटा होता तो हम मान लेते हैं कि बाप के बाद बेटा संभाल के रखेगा, लेकिन इसका तो कोई बेटा ही नहीं, पैगंबर का बेटा था लेकिन इन्ना शाने अका हुआ लबतर, जब उनका इंतकाल हो गया, दो बेटे थे, दोनों ही का इंतकाल हो गया, एक कासिम एक अब्दुल्ला। अब जैसे ही दूसरे बेटे अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ, तब तो पूरा मक्का एक ही जुमला कहता है हर मुसलमान को देखकर, वो सड़क पे जाएं, वो बाजार में जाएं, वो खाने काबा में आएं, वो दुकान पे जाएं, कितने दिन हमसे अलग रहे हो, मोहम्मद मरने वाले हैं, उनकी कोई औलाद नहीं, फिर तुम्हारा क्या होगा। अब वाकई उस जमाने में तो ऐसे आदमी को कुछ नहीं, गया वो खत्म, मार दिया गया, मुसलमान परेशान। देखिए कुरान की बहुत आयतें आपको मक्के वाली नजर आएंगी, अल्लाह पे भरोसा करो, अल्लाह है हिफाजत करने वाला अल्लाह, लेकिन वो सारी जबानी बातें हैं ना। जैसे आज आप देख लीजिए, आज सब मोमिन है, अल्लाह पे यकीन रखते हैं, अल्लाह कह रहा है मैं राजिक हूं, फिर क्यों लोग हराम की तरफ चले जा रहे हैं। हम तो कुरान पे ईमान रखते हैं ना, जब अल्लाह राजिक है, रिस्क देने वाला है, हमें जरूरत है किसी का माल हजम करने की, हमें जरूरत है सेंट्रल लीग में जाके झूठे क्लेम करने की, क्यों कर रहे हैं। अल्लाह राजिक है, कुरान पे भी यकीन है, रसूल में भी यकीन है, लेकिन दिल में वसवसे तो आते रहते हैं। तो आप मुसलमान, कुरान कह रहा है, लेकिन मुसलमान कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल दुनिया में तो अगर मोहम्मद मारे गए तो हमारा कौन बचाने वाला होगा, फिर शहजादी की विलादत हो गई। पैगंबर ने कहा अल्लाह फातिमा के जरिए से मेरे दीन को बचाएगा, लेकिन मसला यह फातिमा औरत, और ट्राइबल सिस्टम के अंदर बाप के बाद बेटा हुक्मरान बनता है, बेटी नहीं। लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह, मगर ये तो घर में बैठने वाली बेटी है। कहा कि नहीं, अल्लाह इसके जरिए दीन बचाएगा, क्यों, अल्लाह इसको वो बेटा अता करेगा जो मेरे दीन को की हिफाजत कयामत तक करेगा। अब पैगंबर ने जुमला कहा, जब भी कुरैश टोंटिंग करते हैं मुसलमानों पर, खाली टोंटिंग नहीं करते, उन्होंने टॉर्चर किया हुआ है मुसलमानों पर, जिनको प्रोटेक्शन है मुसलमानों को, उनको भी टॉर्चर कर रहे हैं, और बार बार कह रहे हैं मोहम्मद मर जाए फिर देखना हम सारे बदले लेंगे। ऐसे ही होता है ना, जब आपको कोई बहुत बड़ा आदमी प्रोटेक्ट करे तो लोग कहते हैं चलो कितने दिन ही है, ये मरेगा तो ना, फिर देखना हम बदले लेंगे। और ये दुनिया की पॉलिटिक्स में यही है, ईरान को कहा गया कि खुमैनी किसी दिन तो मरेगा ना, फिर देखना कैसे हम तुम्हारा खात्मा करेंगे। आज यही जुमले आ गए खामिनाई रहबर के बारे में कहे जा रहे, नेचुरल बात। तो कहा कि पैगंबर ने कहा कि नहीं, फातिमा के जरिए अल्लाह मेरे दीन को बचाएगा, क्योंकि अल्लाह इनको एक ऐसा बेटा अता करेगा। अब ये पैगंबर जबान से कह रहे हैं, पैगंबर का कलमा पढ़ना, पैगंबर की बात पर ईमान भी है, मगर दिल में तो शैतान वसवसे पैदा करता है ना कि फातिमा तो है, वो बेटा कहां है, अगर नहीं हुआ तो बहुत बड़ी चीज है। एक होता है, देखिए आपने अपने बेटे से कहा बेटा अगर तुमने एग्जाम पास कर लिया तो हम तुम्हें आईफोन ला के देंगे। खैर अब आजकल तो बच्चे बच्चे के हाथ में आईफोन है, मैं यूं एक मिसाल दे रहा हूं, आईफोन देंगे। आपने उसे वादा किया, मेहनत कर रहा है, लेकिन दिल में ख्याल आ रहा है कि बाद में अगर बाप मुकर गए या उसके हालात बिगड़ गए। आपने क्या किया, आईफोन खरीद लिया, खरीद के ला के उसके सामने रखा, का देखो ये है, ये कबर्ड में रखा, इम्तिहान पास करो ये तुम्हारा। आपने उसको दिखा दिया, अब जो है ना उसका यकीन बढ़ जाएगा। या आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा शौक है उनको मोटरसाइकिल चलाने का, जब एग्जाम पास करेंगे तो हमें मोटरसाइकिल चाहिए, और वो भी पाकिस्तान की मोटरसाइकिल है, हर वक्त जिंदगी खतरे में है। तो बाप ने कहा अच्छा मैं दिलवा दूंगा, बेटे को भरोसा नहीं है, बाप कह तो रहा है, हो सकता है बाद में वादा पूरा ना करे। हमारे तो एक लीडर कहते हैं कि यू टर्न तो बहुत अच्छी चीज हुआ करती है लीडर के लिए। तो अब बाप ने क्या कहा, खरीद के मोटरसाइकिल घर में रख दी, कहा यह है चाबी, देखो ये रखिए, तुमने एग्जाम पास किया, चीज तुम्हारी हो गई। याद रखी, बाप के जबानी कह देने से, चाहे बाप पे ट्रस्ट भी हो, और चीज ला के रख देने से फर्क होता है, यकीन बढ़ जाता है। अच्छा ये हम और आप नहीं आए, ये अंबिया की मंजिल है, सूरह बकरा आयत नंबर 260। इब्राहिम, जब इब्राहिम ने कहा या रब्बे अरिनी कैफा तुहयिल मौता, अरे खुदा मुझे ये दिखा दे तू मुर्दे को किस तरह जिंदा करता। इब्राहिम कह रहे जो इस कायनात की 15वीं अफजल तरीन शख्सियत है, 14 इमाम, 14 मासूम, 5वां इब्राहिम। खुदा ने क्या कहा, कुरान कह रहा है ना, खुदा ने क्या कहा, अरे इब्राहिम वलम तुमिन, क्या तुम्हें ईमान नहीं है मेरे इस पावर पे, नबी खुदा इतना बड़ा नबी, अरे खुदा दिखा दे मुर्दे को कैसे जिंदा करता है खुदा ने कहा, क्या तुम्हें ईमान नहीं है इस बात पे? कहा नहीं, ईमान है। ले यतमईन कल्बी, ये कुरान की आयत है, बला वलाकिन ले यतमईन कल्बी, बिलीव है लेकिन मैं चाहता हूं वो श्योरिटी की मंजिल, यकीन की मंजिल। एक होता है ईमान, ईमान के ऊपर एक स्टेज आता है यकीन का। हजरत अल्लामा रशीद तुरावी अल्लाह मुकामहू की शाम गरीबा की उनकी जिंदगी की लास्ट स्पीच जो टीवी पर आई थी, यकीन देख लीजिए आपको पता चलेगा ईमान है बिल्कुल सही, लेकिन सबसे बड़ी चीज है यकीन। इब्राहिम ने कहा ईमान है यकीन, यकीन होता है आंखों देखी चीज। ये व्हाट्सएप और सोशल मीडिया चल ही इस बात पे रहा कि आपको यकीन से हटाया जाए, लेकिन अभी मैं फिसल रहा हूं। चुनाचे मेरा आपको पता है कि खुदा ने कहा ऐ इब्राहिम चार परिंदे लेकर आओ, उनका कीमा करो, कीमा और सबको मिक्स कर दो, और फिर ये कुछ पहाड़ों पे रख दो। ये इमाम हसन ही की एक हदीस है जो बहुत बात का सब्जेक्ट है, अभी सुन लीजिए। कुछ पहाड़ों पे रख दो, ऑन सम हिल्स, सम कुछ। हजरत इब्राहिम ने वो कीमा, जैसे हमारे यहाँ कराची में कटाकट होता है, बहुत सारी चीजें मिला दी जाती हैं, तो एक कीमा, चार परिंदे, मोर, मुर्ख, कबूतर, कौवा। ये खाने की बात नहीं हो रही है कि आप कहीं तो हराम परिंदे भी आ गए, नहीं, ये तो दिखाना मुर्दे को कैसे जिंदा करते हैं। और चारों बड़े अहम परिंदे हैं। मोर जो है वो शो ऑफ, बहुत अपने आप को खूबसूरत समझता है मोर, जब तक के पैरों को ना देखे, लेकिन खैर मोर का मतलब है खूबसूरती पे फखर ना करना। कौवा लालची, कभी लालच नहीं आनी चाहिए चीजों की। कबूतर खेल कूद, वैसे तो हमारे यहां सैयद माना जाता है ना कबूतर, लेकिन कबूतर यानी खेल कूद। और फिर आखिर में मुर्ग आता है, एक से ज्यादा शादियां करना। मैं बहुत एहतियात से बात कर रहा हूं कि चार परिंदे जो अल्लाह ने मंगवाए थे तो वो इंसान की चार बुरी क्वालिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल आए थे फिजिकल परिंदे। हजरत इब्राहिम ने चारों को जबा किया, उनका गोश्त कीमा बनाया। कीमा, कीमा तो आप समझते होंगे, इतनी उर्दू तो आपकी खराब नहीं हुई होगी। और उसको फिर मिला के दस पहाड़ों पे रखा। एक हदीस है इमाम हसन के हवाले से कि किसी ने कहा मौला मेरा बाप मर गया है, और उसने कहा है कि कुछ माल मेरी बहन को दे देना। वैसे तो मरने वाले की जायदाद में बहन का हिस्सा नहीं है, अगर उसका बेटा मौजूद, कुछ तुम्हारा कितना दे का 10%। रावी ने पूछा 10% कैसे बना, कुछ का मतलब सम, सम का मतलब 10% क्यों? कहा इब्राहिम ने कुछ पहाड़ों पर कीमा रखा, कुरान कह रहा है कुछ, और वो 10 थे। तो इसका मतलब यह कि कुरान की टर्मिनोलॉजी में 10 मींस सम मींस 10, 10 पहाड़ों पर आवाज दी। अब ये सब आयतें हैं क्योंकि ये इमाम जमाना के हवाले से है कि आवाज दी इब्राहिम ने, 10 पहाड़ों पर से गोश उड़ा कीमा, और फिर वो आपस में एक दूसरे से इस तरह मिला कि कौवे का गोश कौवे से और मोर का मोर से ही। तो मैं आपका ज्यादा वक्त ले रहा हूं। रिवायत यह है कि जब इमाम आके आवाज देंगे तो जितने लोग अपनी अपनी कब्रों में हैं मिट्टी बन गए हैं। कब्र के मुर्दे सिवाय शहीद राहे खुदा या बहुत मुकद्दस आदमियों की, उसकी डेड बॉडी तो कब्र में मिट्टी बन गई, बल्कि एक कब्र में पता नहीं कितने मुर्दे हैं। हर हर कब्र में जब इमाम आएंगे पता नहीं वहां कितने मुर्दे पहले दफन हो चुके हैं। ये खुद मासूमीन की हदीस है, जब इमाम जमाना कॉल करेंगे इब्राहिम का मौजूदा अल्लाह ने इसलिए दिखाया नहीं, कुरान में मेंशन किया, ताकि कोई ये ना कहे कि कैसे पॉसिबल है भाई, इब्राहिम का वाकया तो कुरान में, इमाम जमाना आवाज देंगे कब्र से इस तरह से मुर्दे निकलेंगे। अब ये कई सवाल थे जिनको मिला के मैं रिवायत पढ़ रहा हूँ। मौला उस कब्र में हो सकता है 500 साल पहले कोई काफिर दफन हुआ, और 200 साल पहले कोई मुशरिक दफन हुआ, और 100 साल पहले कोई दुश्मन अहले बैत दफन हुआ, और फिर एक मोमिन भी वहीं दफन हुआ, तो सब तो मिक्स हो गए ना। इमाम ने यही इब्राहिम के वाकये से बताया कि आवाज देंगे इमाम जमाना, और एक मरतबा उसी कब्र के अंदर जितने मरने वालों के गोश्त मिक्स हुए हैं उनमें से मोमिन निकल के इमाम तक पहुंचेगा, लेकिन वो एक अलग मौजू है इंशाल्लाह। शहादत की रातों में, जो इस साल शहादत की रातें अभी इसी वीक से शुरू हो रही हैं, सैटरडे से, इमाम जमाना और इमाम अली, ये मेरा टॉपिक है, वहां ज्यादा तफसील आएगी। ये बात इस पे आ गई कि इब्राहिम ने कहा कि नहीं अरे अल्लाह तूने कह दिया कि तू मुर्दे को जिंदा करता है, काफी है, दैट्स ऑल इनफ, ईमान है। लेकिन यकीन है अगर आंख से देख लू, इब्राहिम जैसा ये कह रहा, तो अब वो तो जो मक्के के नए नए मुसलमान थे ना, सारे मुसलमान नए तो का लफ्ज गलत है, जो पहले ही तबलीग में मुसलमान हुए, पैगंबर कह रहे इत्मीनान रखो, फातिमा की विलादत के बाद कह रहे इत्मीनान रखो, ये मेरी बेटी बचाएगी सारे इंसान सारे मुसलमानों को। ईमान है, यकीन नहीं आ रहा जब तक आंख से न देखे। और एक मरतबा मदीने पहुंचकर 15 रमजान को यह खबर फैली कि फातिमा के घर में बेटा पैदा हुआ, तो अल्लाह के रसूल उसे लेके मस्जिद नबवी में आते हैं। दो आदमियों से अल्लाह के रसूल ने हसन मुश्तबा को दिखाया, दो आदमी थे जिनको दिखाया और एक जुमला एक एक जुमला कहा। तो पहले तो आप देख लीजिए मस्जिद में जितना क्राउड, और कहा देखो ये है मेरा वो बेटा जिसके लिए मैं मक्के से कहता आ रहा हूं। जब तुम मुझसे ये सवाल करते थे कि या रसूल अल्लाह अगर आपकी मौत हो गई तो आपके बाद हमारा प्रोटेक्टर कौन है, या मुजीर, मुजीर अल्लाह का नाम है लेकिन इमाम का भी नाम, हमारा प्रोटेक्टर कौन है, हमारा मुहाफिज कौन है, आपके बाद कौन हमें बचाएगा, हमारे कबीलों ने तो हमें निकाल फेंका है। आपने कहा अल्लाह मुझे बेटा देगा फातिमा के जरिए, बार बार आप कहते थे। पैगंबर ने कहा देखो ये वही मेरा बेटा है जिसके लिए मैं मक्के से कहता आ रहा हूँ। अल्लाह ने फातिमा को बेटा नहीं दिया है, अल्लाह ने कयामत तक के तमाम मुसलमानों की हिफाजत का इंतजाम इस दुनिया में भेजा। और ये जुमला तो मैंने इसलिए कहा कि उस वक्त मुसलमानों को परेशानी थी दुनियावी मैटर्स की, पुलिस नहीं है, फौज नहीं है, हम अकेले हैं, हमारे कबीले निकाला, वरना हसन हसन खाली दुनिया में ही नहीं, लकब क्या है, सैयदा शबाब अहले जन्ना है, जन्नत के जवानों का सरदार है, दुनिया में भी यही हमको नजात दिलाएगा और आखिरत में भी यही हमको नजात दिला के अपने साथ जन्नत में लेके जाएगा। तो उस दिन सारे मदीने में मुसलमानों ने बाकायदा ईद से पहले ईद सेलिब्रेट की, वो ईद उजारा हसन। अच्छा एक जुमला में कह दूं, इसको तौहीन मत समझिएगा, आका हुसैन की विलादत पर इस अंदाज से खुशियां नहीं मनाई गई। एक तो वैसे ही आका हुसैन की विलादत पर मसाए भी बढ़े गए, लेकिन इसके अलावा भी जो आका हसन का इंतजार जिस तरह मुसलमानों को था, फातिमा को भी और मुसलमानों को भी, फातिमा ने भी जिंदगी की पहली खुशी मनाई हसन की विलादत पर। यह ईद उजारा आज है, असली ईद उजारा 15 रमजान है। और पूरे मुसलमानों ने भी इस्लाम आने के बाद पहली खुशी जो मनाई सबने मिलकर, वो हसन मुश्तबा की विलादत पे मनाई। आज तो मदीने का माहौल ही कुछ और, आज हर आदमी को यह इत्मीनान हुआ है अब मेरा माल महफूज है, अब मेरी औलाद महफूज है, अब मेरी इज्जत महफूज है, अब मेरी जान महफूज है, अब मेरे घर की खवातीन का एहतराम महफूज है। यह हसन मुश्तबा के आने से क्या माहौल था, जरा देखिए कभी तारीख में जाकर। और हसन मुश्तबा ने फिर एक और हमें पैगाम दिया, मैं वो खुशी बताना चाह रहा हूं जो मुसलमानों ने जिस तरह हसन मुश्तबा को सेलिब्रेट किया इस विलादत। एक और बात सुन लीजिए, अल्लाह, अभी मैंने आयत तिलावत की कि अल्लाह के अच्छे अच्छे नाम, तो अल्लाह के बहुत सारे नाम है। अभी तो आप हजरात तैयारी कर रहे हैं ना दुआ जोशन कबीर पढ़ने की शब आए कदर, 1001 नेम्स ऑफ अल्लाह, 82 नेम्स तो आए दुआ मुजीर अभी हमने पढ़ी, और आप तो 3 दिन से पढ़ रहे हैं, और 1001 जोशन कबीर। लेकिन अल्लाह के बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो अल्लाह के नाम तो हैं लेकिन वो नाम अल्लाह को मिल नहीं सकते जब तक कि अल्लाह पैगंबर को पैदा ना करे। नाम अल्लाह के, जब तक पैगंबर को पैदा नहीं करेगा अल्लाह को वो नाम मिलेंगे नहीं। चुनाचे एक हदीस कुदसी हमारे पास है, बिहारुल अनवार में भी है, कुंतो कंजन मखफियन फाहबबतो अन उरिफा फखलक्तुका या मोहम्मद, ऐ हबीब मैं एक छुपा हुआ खजाना था, हिडन ट्रेजर, मैंने यह चाहा कि लोग मेरी मारिफत हासिल करें तो मैंने तुझे पैदा किया, पैदा तू हुआ है, मारिफत अल्लाह की हो रही है। अच्छा ये इस पर पूरा अशरा भी है हमारे उलमा का, मैं छोटी सी बात कहता हूं, अल्लाह खालिक है, क्रिएटर, लेकिन जब तक कि किसी चीज को क्रिएट नहीं करेगा उसको क्रिएटर कहा नहीं जा सकता। है वो क्रिएटर लेकिन कहा कब जाएगा, जब कोई चीज वो खल्क करे ना। जैसे छोटी सी मिसाल दे दूं, आप में से जितने लोग इस वक्त इस मजमे में गैर शादीशुदा बैठे हैं या शादीशुदा हैं अभी औलाद नहीं हुई, आप में से हर एक बाप है, लेकिन अभी हम आपको बाप नहीं कहेंगे जब तक आप एक बेटा पैदा करके ना दिखा दें। खैर ये लफ्ज़ अच्छा नहीं हुआ, जब तक आपका बेटा पैदा ना हो, लेकिन है आप बाप, यानी अगर आपको इस वक्त हम ले जाए किसी मेडिकल लैब में और आपका टेस्ट कराए तो कहा जाएगा 100% ये आदमी बिल्कुल ठीक है। जो लड़कियां इस वक्त बैठी हैं जिनके औलाद नहीं, वो हैं सब मां, लेकिन मां नहीं कहा जाएगा जब तक कि उनके यहां बेटा पैदा ना हो जाए। चाहे मेडिकल तमाम रिपोर्ट्स बताएं कि ये बिल्कुल ठीक, हर तरह से फिजिकली और मेडिकली फिट है और इसके औलाद हो सकती है, लेकिन कहां कब जाएगा ना जब वो ये इस मरहले से। अल्लाह खालिक है, क्रिएटर है, लेकिन किसी को क्रिएट करे तो उसका नाम पड़ेगा खालिक। रिस्क देने वाला अल्लाह राज़िक है, लेकिन जब कोई हो रिस्क लेने वाला जिसे अल्लाह रिस्क दे तब अल्लाह का नाम कहलाएगा राज़िक। अब अल्लाह के जितने सिफात वाले नाम है, अफाल वाले, अल्लाह हई है और मुहयी है, जिंदगी देने वाला, लेकिन जब किसी को जिंदगी देगा तब अल्लाह को ये नाम दिया जाएगा। तो अब ये तो एक बहुत बड़ा फजाइल है मोहम्मद और आले मोहम्मद का एक चैप्टर कि अल्लाह के नाम है लेकिन इनके वजूद में आने के बाद वो नाम अल्लाह को मिले। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि मैं अपनी मारिफत कराना चाहता था कि मैं खाली अल्लाह नहीं हूं, मैं खालिक भी हूं, मैं राज़िक भी हूं, मैं हयात देने वाला भी हूं, तो मोहम्मद को पैदा किया। इसी तरीके से एक खास बात जो मैं कहने जा रहा हूं, बहुत एहतियात से भी कहूंगा लेकिन कहूंगा जरूर, शहजादी कौनैन के कितने अलकाब हैं वो उनको मिलते रहे, मगर एक लकब शहजादी कौनैन का ऐसा एक टाइटल या एक क्वालिटी या एक खसूसियत शहजादी फातिमा में ऐसी हमेशा से थी, लेकिन जब तक कि हसन मुश्तबा पैदा नहीं हुए उस वक्त तक वो क्वालिटी फातिमा की सामने नहीं आ सकी। अब फातिमिया हमारे यहां बड़े भरपूर तरीके से आजकल मनाया जाता, शहजादी की शहादत पर मजलिसें होती हैं, 5 या 10 या 10 दोनों तारीखें, उसमें ये बात आप सुनते हैं। शहजादी का एक बहुत ही अहम टाइटल है बतूल। अंदाजा करें उस बच्चे का कि जो अपनी मां की फजीलत को दुनिया के सामने इस अंदाज से बयान कर रहा है, बतूल। बतूल के माने हैं, चूंकि मेंबर से भी अच्छा नहीं लगता और फातिमा के हवाले से भी अच्छा नहीं लगता तो हम लोग कहते हैं बतूल माने पाक। लेकिन आप मजलिसों में सुनने के आदि हैं, खुसूसन जो बुजुर्ग लोग हैं, कि बतूल का मकसद यह है कि फातिमा उन तमाम खराबियों से दूर थी जो एक नॉर्मल औरत को अल्लाह ने सिस्टम में बनाई। अब उसके अंदर एक महाना निजासत का सिलसिला चले वो तो पाक। दूसरा ये कि फातिमा बतूल हैं, यानी जब किसी औरत के यहां बच्चे की विलादत होती तो वो चंद दिनों के लिए नजीस हो जाती है। अब वो वहां उसके अंदर इस्लाम में मिनिमम कोई मकदार नहीं, हो सकता है कोई औरत सिर्फ 1 मिनट के लिए नजीस हो और हो सकता है कोई 10 दिन, मैक्सिमम है 10 दिन। मुझे याद है अब तक कि जब मैंने खारादर में ये मजलिसें शुरू की थी इस अंदाज की, तो एक कंसेप्ट था वहां पे कि 40 दिन तक औरत नजिस रहती, और हमारे यहाँ यूपी में भी था 40 दिन का चलना औरत बच्चे की डिलीवरी के बाद 40 दिन नजिस, नमाज कदा हो रही हैं, रोजे छोड़े जा रहे हैं, वाजिबात छूट रही हैं, यानी बच्चे की बुनियाद में पहली ईंट ही हराम पे रखी जा रही। और क्या क्या झगड़ा करके, क्या क्या लड़ाइयां लड़के ये फिकही मसाला बताना पड़ा कि मैक्सिमम 10 दिन है, वो भी 10 दिन हर एक के लिए जरूरी नहीं है, कोई 8, कोई 6, कोई 4, कोई 3, कोई 2, कोई 1, कोई सिर्फ 1 घंटा। वो बहरहाल बहुत लंबी जोड़ी बहस है, मैं कहीं इसलिए निकल गया कि बहुत सारे लोग आज जो मेरे खिलाफ बहुत सारी बातें करते हैं ना, मुझे पता कि जब वो पैदा हुए थे तो उनकी माँ, मैं बॉसों की माँ है, मेरी शागिर्दे थी, और या उनकी माँ की माँ नानी 40 दिन अपने आप को नजीस समझ रही थी, बड़ी मुश्किल से वो इन खराबियों से उनको निजात दिलाई गई। तो खुलासा ये कि हर औरत इस मरहले से गुजरेगी, कुछ देर के लिए नजीस होगी, कहा फातिमा बतूल, यानी फातिमा के यहाँ अगर बेटे की विलादत होगी तो 1 सेकंड के लिए भी नजासत का तस्वुर नहीं। चुनाच तारीखों में लिखा कि इमाम हसन की विलादत हुई थी दिन के वक्त, वरना बाकी मासूमीन के आम को मिलता है फजर के करीब, फजर से कुछ पहले। रोजे का वक्त, रोजा कब शुरू होता है? फजर से। नमाज सुबह का टाइम क्या है? फजर। याद रखिए दोनों का सेम टाइम है, 10 मिनट का गैप जो हम डालते हैं उसकी एक और वजह है, वो वक्त नहीं है मेरे पास, टाइम सेम। इमाम हसन के बारे में है कि असर के वक्त पैदा हुए और वो रोजा शहजादी फातिमा ने मुकम्मल किया, रोजा टूटा ही नहीं, और अगला रोजा भी रखा अगले दिन का, और फिर मगरिब और इशा की नमाज भी पढ़ी। तो वो तो हमारा इतकाद है ही ना कि शहजादी पाक है, पाकीज़ा है उन तमाम खराबियों से, उसमें बाकी चीजें अपनी जगह, लेकिन ये बतूल का दूसरा माने एक महाना नजासत से पाक है वो ठीक, और एक बच्चे की विलादत के बाद डिलीवरी के बाद जो नजासत है फातिमा उससे पाक। ये वाली फातिमा की खसूसियत अब तक दुनिया के सामने नहीं आ सकी, चासी नहीं था। ये कब आएगी खसूसियत? जब फातिमा के यहां पहली औलाद हो तब लोगों को पता चलेगा। यानी यकीन है, लेकिन दुनिया के सामने फातिमा की यह खसूसियत कि फातिमा बतूल है हसन मुश्तबा की वजह से आ रही है। हसन पहली औलाद है फातिमा की, जब हसन पैदा हुए और तो ने पूछा जाके शहजादी तो अब आपके लिए कुछ खाने पीने की चीज लाए, रोजा टूट गया। कहा मेरा रोजा नहीं टूटा, तुम्हारे रोजे टूटते। ये कब पूछा? ये हसन की विलादत के, हुसैन की विलादत में नहीं आई ये खसूसियत, जैनब की विलादत में नहीं आई, कुलसूम की विलादत में नहीं आई, क्योंकि सब तो बात की चीजें ना। उससे पहले माहौल देखा है ना आपने, भाई किसी की विलादत हुई खासतौर पर घर में हुई तो अतराफ की पड़ोसन हमसाए आएंगे, कुछ लाए खाने के लिए, कुछ लाए पीने के लिए। कहा मेरा रोजा है, क्या लेकर आओगी? नमाज का वक्त आया, मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ रही है शहजादी, अभी आपके बच्चा पैदा हुआ, आपका रोजा? कहा हमारे रोजे नहीं टूटते हैं, अल्लाह ने हमें इन तमाम चीजों से महफूज रखा है। मगर कब फातिमा की यह खसूसियत सामने आई? जब हसन मुश्तबा पैदा हुए। तो जिस तरह मोहम्मद ने पैदा होकर अल्लाह को खालिक का नाम दिया, अल्लाह को राजिक का नाम दिया, वो सारे नाम दिए, हसन मुश्तबा ने दुनिया में आके अपनी माँ फातिमा जहरा को बतूल का लकब अदा किया। तो फातिमा जैसी शख्सियत को लकब जिसकी वजह से मिले उसका नाम हसन है। ये तो पैगंबर ने मदीने वालों के सामने हसन को पेश किया था और कहा था कि देखो मेरा ये वो बेटा जिसके लिए मैं कहता आ रहा था कि तुम्हें बचाएगा। मैंने कहा दो शख्सियत, और उम्मुल फजल के पास लेके गए। इसके बाद बेटा पैदा हुआ, पैगंबर मस्जिद में लेके गए, फिर घर आए और उम्मुल फजल के पास ले गए और उनकी गोद में बच्चे को डाल दिया और कहा यह है वो जो मैंने तुमसे 10 दिन पहले कहा था। ये कौन सा वाकया? बहुत मशहूर वाकया, उम्मुल फजल पैगंबर की चची। लेकिन अरबों में शादियां कुछ इस तरह होती थी कि एक आदमी के दूसरे से कई रिश्ते होते थे, वो चची भी होती हैं और वो साली भी होती हैं और वो और भी रिश्ते बनते हैं। उम्मुल फजल नाम मशहूर है, पैगंबर के चचा हजरत अब्बास, करबला वाले नहीं दूसरे अब्बास, उनकी बीवी। उन्होंने चंद दिन पहले ख्वाब देखा था कि पैगंबर मेरे करीब से गुजरे और उनके बदन का एक टुकड़ा कट के मेरी गोद में गिर गया। वो बहुत परेशान, ये ख्वाब खराब ख्वाब है, बुरा ख्वाब है, इसमें कुछ ऐसा मैसेज है जैसे तुम उसके खिलाफ हो, उसका जिस्म टुकड़े करना चाहते हो। उम्र फजल बहुत परेशान थे, रसूल से जाके कहा या रसूल अल्लाह ये मैंने कितना भयानक ख्वाब देखा, क्या मैं आपके खिलाफ हूं कि आपका बदन काट के अपनी गोद में लू? तो ठहर जाओ, इंतजार करो, तुम्हें इस ख्वाब का मतलब पता चलेगा। और जब विलादत हुई यानी कल 15 रमजान, पैगंबर मस्जिद से वापस आके हसन मुश्तबा को उम्मुल फजल की गोद में देते और कहते ये है तेरा ख्वाब जो तूने देखा था, परेशान थी, ये मेरे हसन के दुनिया में आने की बशारत थी और खुशखबरी थी कि हसन मेरा टुकड़ा है जो तेरी गोद में पलेगा। और हसन भी हुसैन की तरह से, हुसैन उन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हसन भी मिन्नी वाना मिनल हसन, पैगंबर का टुकड़ा है। लेकिन यहाँ एक रिवायत हमारे पास आती है, ये उम्मुल फजल का मैंने वाकया पढ़ा, ये बहुत मशहूर है, लेकिन इससे एक रिलेटेड एक पैगाम है, उसी पे बात खत्म करूंगा। क्या ये जो उम्मुल फजल के ने ख्वाब देखा पैगंबर का टुकड़ा, आजकल आप अक्सर उलमा से सुनते हैं कि शहजादी के बारे में एक हदीस है उसका ट्रांसलेशन गलत किया जाता है, फातिमा तो मिन्नी, ट्रांसलेशन होता है फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा, गलत, फातिमा मेरा टुकड़ा है, बस अतो मिन्नी है, ये नहीं है बस अतो मिन कबदी, कबद माने लीवर जिगर, मेरा टुकड़ा। इसी तरह हसन डायरेक्ट रसूल का टुकड़ा। अब यहां पे हमारे पास एक हदीस आती और ये हदीस को एक दूसरे स्टाइल से शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने सिर्रुश शहादतैन पूरी किताब इसी पर बेस करके लिखी, लेकिन वो एक और कॉन्टेक्स्ट है, शहादत में अच्छा रहेगा आज मैं असल हदीस। और वो हदीस ये कि हसन और हुसैन मिलकर पैगंबर बनते, आधा जिस्म हसन का रसूल से मुशाबे और आधा जिस्म हुसैन का रसूल से मुशाबे। इसीलिए बरादरान अहले सुन्नत के पास एक हदीस है जिसको पढ़ के कभी हंसी भी आती है, कैसी कैसी हदीसें लिखी, لیکن جو پیغام اس میں دیا گیا ہے نا وہ پیغام ہمارے مجتہدین کے پاس بھی ہے. چھ اہم کتابیں ہیں نا برادران اہل سنت کی، اس میں سے ایک کا نام ہے مسند ابو داؤد، یہ فورتھ نمبر پہ آتی ہے. اب حدیث بھی ایسی ہے کہ پڑھی بھی نہیں جا رہی ہے، ہنسی بھی آتی ہے، لیکن طارق جمیل صاحب نے یہ حدیث پڑھی ہے اور غالباً اس کو 7 ملین یعنی 70 لاکھ ویورز ملے. کہ وہ ایک دن حسن رسول اللہ کی آغوش میں تھے اور حسن نے پیغمبر کے جسم پر پیشاب کر دیا، اور پھر وہ جو گھر کی خاتون تھی وہ دوڑی پیغمبر کو کپڑا پاک ہو یا وہ ہو، وہ سارا اتنا ٹائم فضول باتوں کے لیے نہیں. تب پیغمبر نے کہا کہ نہیں نہیں یہ نہیں کرو، اس کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں، اس پہ پانی ڈال دو. پھر وہ جملہ کہا جو فقہی مسئلہ ہے، اور کہا کہ لڑکے کا پیشاب خالی پانی ڈال دو تو کافی، نہ نچوڑنے کی ضرورت ہے نہ پاک کرنے کی ضرورت ہے، لڑکے کا پیشاب اگر ہے تو اس کو بالکل بڑے آدمی کی طرح پاک کرنا. اور یہ ہمارے یہاں بھی ایک فقہی مسئلہ ہے، اگرچہ آغا سیسانی اس کو نہیں مانتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں لڑکا اور لڑکی دونوں کا سیم مسئلہ، اور وہ کہ خالی پانی کب تک، جب تک وہ کھانا نہ کھا رہا ہو دودھ پر، جب تک دودھ پر. باتیں بہت ساری ہیں فقہی مسائل میں، تو غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ناف، ناف ہر آدمی کے جسم کا بالکل وہ سینٹرل پوائنٹ ہوتا ہے جہاں سے جسم کٹتا. تو وہ کہتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل نہیں، وہ تو اتنا کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن برادران اہل سنت کہ حسن وہاں تک رسول کے مشابہ تھے. یعنی نعوذ باللہ میں کیسے جملہ کہوں، وہ حسن دراصل یہ عمل نہیں کر رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں تک کی میری باؤنڈری ہے اور اس کے بعد کی باؤنڈری میرے بھائی حسین کی. اب دیکھیے یہ بھی تقریر کی جاتی ہے اور یہ بھی نقطے نکالے جاتے ہیں، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ یہ حدیث ہے کہ آدھا جسم ناف سے اوپر حسن مشابہ رسول کے، اور ناف سے نیچے آدھا جسم حسین. اسی لیے ہمارے ہاں آقا حسین کا لقب نہیں ہے، شبیہ رسول خدا علی اکبر کا لقب اور حسن مصطفیٰ کا لقب. اچھا اب اس کے لیے مجھے یاد ہے میں نے 28 سفر کی مجلس میں تھوڑی ڈیٹیل بتائی تھی، اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، بات کو سمیٹ رہا ہوں. اور وہ یہ کہ یہ حدیث جو آئی ہے وہ اپنی جگہ ہوگی، فزیکل ریزمبلنس بھی ہوگا، لیکن اصل جو اس حدیث کا میسج ہے وہ یہ کہ حسن مشتبہ صلح نامے پہ دستخط کریں گے، اور صلح نامہ لکھا جاتا ہے، کوئی بھی عبارت لکھی جاتی ہے ہاتھوں سے، اور حسین چل کے میدان جہاد میں جائیں گے، اور میدان میں آدمی چل کے جاتا ہے پیروں سے. تو رسول بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ چاہے کوئی تحریر لکھ رہا ہو تو وہ بھی میری شباہت ہے، اور کوئی چل کے میدان میں جہاد کر رہا ہو وہ بھی میری شباہت ہے. یعنی رسول حسن کی صلح کو بھی اپنی صلح قرار دے رہے، حسین کے جہاد کربلا کو بھی اپنا جہاد قرار دے رہے. تو آدھا جسم ناف سے اوپر. ام الفضل نے خواب میں کیا دیکھا، رسول کے بدن کا ٹکڑا کٹا اور وہ ہاتھ. اچھا اب یہاں پہ ایک بات سنیے بہت اہم ہے، اور اسی پہ شاید میں اپنی گفتگو ختم کروں، اور وہ یہ کہ تبلیغ کے جتنے بھی ذریعے ابھی تک ایجاد ہوئے ہیں، تبلیغ مینس کمیونیکیشن، وہ ساروں کا تعلق اوپر کے جسم سے. ابھی تک تو دنیا میں چلا رہا تھا لکھنے کا رواج، اب ختم ہو رہا ہے. نیکسٹ جنریشن کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا لکھنا کسے کہتے ہیں، لکھنے کا رواج. کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے زبان، لکھنا ہاتھ سے ہوتا ہے، ہاتھ کہاں ہے، جسم کے اوپر کے حصے میں. اب آپ ریئر چیز کو ایگزامپل بنا کے نہیں لے آئیے کہ فلاں صاحب کے ہاتھ کٹ گئے تو پیر سے بھی لکھنا سیکھ لیا انہوں نے، نہیں، ایک عام طریقے سے لکھنا ہاتھ. کمیونیکیشن کیا چیز ہوتی ہے، زبان کہاں، یہ بھی منہ کے اوپر کے حصے میں. اب جو دنیا ترقی کر رہی ہے کہ وہ آنکھوں کی مدد سے آپ کمیونیکیٹ کریں گے، اور جو آپ کو لکھنا ہے اور کیا ریٹینا کے ذریعے سے وہ موبائل فون اور آئی فون اور فلا امکا ڈھمکا جو کچھ ہے وہ بھی آنکھ بھی جسم کے اوپر. کہہ رہے اگلا آخری اسٹیج دماغ، آپ سوچیں گے اور آپ کی سوچ کے مطابق وہ کمپیوٹر کی اسکرین پر یا آئی فون کی اسکرین پہ وہ میسج آتا جائے گا. بہرحال جتنی چیزیں بھی کمیونیکیٹ کرنے کی ہیں، تبلیغ کرنے کی ہیں، وہ سب کے سب اوپر کے جسم سے متعلق. آقا حسن کا رول پیغمبر بتا رہے کہ حسن مشتبہ میرے دین کی سب سے زیادہ تبلیغ کرنے والا بنے گا، اور اسی پہ میں خالی صلح کی بات نہیں کر رہا ہوں جو دستخط کی، چھوٹی سی بات عرض کروں کہ وقت اب بالکل ہاتھ سے نکل گیا، کہ صحیح معنوں میں پیغمبر نے اپنے علم کا وارث حسن کو بنایا. اچھا ابھی آپ نے سنا کہ پیغمبر کا ٹکڑا ہے حسن، ام الفضل نے خواب میں دیکھا. کچھ چیزوں میں پیغمبر نے حسن کا انٹروڈکشن کرایا اپنے ذریعے سے، اور کچھ چیزوں میں حسن نے پیغمبر کا انٹروڈکشن کرایا. قرآن کریم کی ایک آیت ہے اور ختم ہو گئی میری بات، البتہ اس میں کچھ منٹ تو لگیں گے. کہا قوم بنی اسرائیل نے کہا کہ آپ نے اس شخص کو ہمارا حاکم کیوں بنا دیا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ زادہ بسطتن فی العلم والجسم، اس لیے کہ اس کے پاس علم بھی زیادہ ہے، جسمانی طاقت بھی زیادہ ہے. پیغمبر مسجد النبوی میں بیٹھے، پوری مسجد لوگوں سے بھری. یہ مشہور واقعات ہر سال سنتے ہیں، لیکن اسی لیے میں مختصر کر رہا ہوں. لوگ سوال و جواب کر رہے ہیں، اور سوال و جواب کا سسٹم پیغمبر کا تھا فرسٹ کم فرسٹ، جو پہلے آیا پہلے وہ سوال کرے گا. ایک ایسی پرسنالٹی انٹر ہوئی جو اتنی گریسفل پرسنالٹی تھی، جس کو دیکھ کے سارا مجمع انڈر پریشر آ گیا. لوگوں نے خود ہی ان کو راستہ دیا، ان کا چہرہ، ان کی شکل، ان کی داڑھی، گریسفل پرسنالٹی. یا وجیہن عند اللہ، قرآن کریم نے وجی کس کو کہا؟ حضرت عیسیٰ، جو دعائے توسل میں پھر معصومین کے لیے لفظ استعمال کرتے، گریسفل. پیغمبر کے سامنے جا کے بیٹھے، 80-85 کی تو ایج ان کی نظر آ رہی ہے. ویسے ہم کو پتا ہے کہ وہ تو 2000 سال کے ہیں شاید، لیکن بظاہر 70-75 سال ان کی ایج. یا رسول اللہ، آج پھر مجھے کچھ پرابلم پیش آ گئے، مسئلے پیش آ گئے، آپ سے مجھے اس کا جواب چاہیے. پیغمبر کی گود میں حسن مجتبیٰ بیٹھے. پیغمبر نے ایک مرتبہ کہا کہ مجھ سے تو آپ پوچھتے رہتے، آج اس بچے سے پوچھیے. 4 سال کا بچہ، حسن 4 سال کی ایج، اور وہ بوڑھا آدمی. اس نے وہ نہیں کہا جو ہم کہیں گے، ہم آقا سیسانی کے پاس جائیں، آقا سیسانی کی گود میں ان کا پوتا بیٹھا ہو، ہم کوئی فقہی مسئلہ پوچھے گا اس سے پوچھو تو ہم ہنس دیں گے کہ آپ تو اچھا مذاق کر رہے ہیں، بہت اچھا جوک ہے، چلے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے ہم سے جوک کیا، لیکن ہم اس بچے کو سیریس نہیں لیں گے، ہم آپ سے پوچھنے آئے ہیں، 4 سال کے بچے سے نہیں. آنے والا جو تھا، پیغمبر کا جملہ سنا، اتنا ہی سیریس اس بچے کی جانب مڑا، اور اس کے بعد کچھ سوال جواب کی، سوال جواب کر کے وہ اٹھا اور جانے لگا. پیغمبر نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں آیا تھا سوال کا جواب لینے، مجھے جواب مل گئے. پیغمبر نے کہا کیسا جواب ملا؟ کہا میں اتنا سیٹسفائی جا رہا ہوں جتنا سیٹسفائی ہمیشہ آپ کے پاس سے جایا کرتا ہوں، کوئی فرق نظر نہیں آ رہا مجھے اس بچے کے جوابات میں اور آپ کے جواب میں، یعنی مجھے کوئی فرق نظر نہیں آ رہا آپ کے علم میں اور اس بچے کے علم میں. یہ کہہ کے وہ باہر نکل گیا. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ ہیں کون؟ فرسٹ ٹائم ہم نے ان کو مدینے میں دیکھا. کہا یہ حضرت خضر نبی ہیں جو اکثر آ کر اپنے پرابلم مجھ سے ڈسکس کرتے تھے، آج میں نے ان کو حسن کا شاگرد بنا دیا. خضر وہ ہیں کہ موسیٰ صاحب کتاب ہیں، شریعت ہے، تورات ہے، موسیٰ 5 اولو العزم انبیاء میں سے ایک ہیں، ان سے کہا جاؤ اور جا کر خضر کے شاگرد بنو، وہ تم سے بڑا ہے. جس موسیٰ کو خضر کا شاگرد بنایا، اس خضر کو حسن مجتبیٰ کا شاگرد بنایا جا رہا. یہ واقعہ قرآن کریم میں کہاں پہ آیا ہے؟ سورہ کہف میں. سورہ کہف کی خصوصیت کیا ہے؟ دجال سے بچنے کی سب سے بہترین دعا سورہ کہف ہے. ہمارا سٹرڈے کا موضوع شروع ہو رہا ہے امام علی، امام مہندی اور دجال. تو خیر، خضر اور یہ جملہ پیغمبر نے کہلوایا، اتنا سیٹسفائی جا رہا ہوں جتنا حد سے جاتا تھا، یعنی حسن کے علم کو رسول کے علم کے برابر قرار دیا. عام آدمی نے نہیں، خضر جیسے نبی نے جو موسیٰ کے بھی استاد ہیں. اب یہاں پیغمبر نے تعارف کرایا حسن کا علم کے حوالے سے. دوسری یعنی الٹا مسئلہ، جنگ صفین ہو رہی اور بعض روایتوں میں جنگ جمل، ایک بار علی کے مخالف، آج باقاعدہ یعنی جان دینے کے ارادے سے لڑ رہے ہیں علی کے مخالف، بلکہ شاید یہ جنگ جمل ہی ہے، کیونکہ آواز یہ تھی اممہ کی حرمت پہ کٹ مرو، اممہ کی حرمت پہ کٹ مرو، اممہ کے نام پہ جان قربان کر دو. اس میں جذبہ زیادہ تھا، جب ماں کا نام آ جاتا ہے نا تو زیادہ جذبہ ہوتا ہے. واقعہ ایسے کہ مولا کی فوج کو دانتوں پسینہ آ گئے، مولا کی فوج. جب امام زمانہ کی فوج آخری جنگ لڑے گی شیطان سے، 3 بار شیطان امام کی فوج کو شکست دے گا. انشاءاللہ اگر موقع ملا، میرا موضوع دجال ہے، شیطان نہیں ہے، لیکن موقع ملا تو یہ بات بھی ان 4 مجلسوں میں عرض کروں گا. امام زمانہ کی فوج کو 3 بار شیطان دبا لے گا، کیونکہ وہ ڈو اور ڈائی والا مسئلہ. شیطان کو پتا ہے کہ آج تو میری موت آ جائے گی، تو وہ تو خیر الگ چیز ہے. جنگ جمل، بار بار اونٹ کے اندر محمل میں بیٹھی ہوئے خاتون لوگوں کو جوش دلا رہی، میرے بیٹوں، میرے جگر کے ٹکڑوں، میری اولادوں، ایک عجیب جذبہ پیدا ہو رہا، چنانچہ اس طرح سے کہ ان کی دشمنوں کی صفیں ٹوٹ نہیں رہی. مولا علی نے اپنے تیسرے بیٹے محمد حنفیہ کو بلا کے کہا تھا نا کہ جاؤ اور جا کے اب تم حملہ کرو. تین بار حملہ کیا محمد حنفیہ نے، جن میں طاقت اتنی ہے کہ ایک بار وہ جو ڈھال ہوتی ہے نا جو جنگ میں کام آتی ہے، اس طرح اپنے ہاتھوں میں لے کے دو ٹکڑے کر دی جیسے ہم کاغذ پھاڑتے ہیں. یہ کوائن جو ہوتا ہے نا آپ کے ہاتھ میں، محمد حنفیہ کوائن ہاتھ میں لے کے رگڑا کرتے تھے، اس کے اوپر جو انگریومنٹ سب مٹ جاتا طاقت، لیکن وہ اس طرح لڑ رہے ماں کے نام پر. تین بار گئے نہیں توڑ سکے ان صفوں کو کہ پھر وہ اونٹ تک پہنچتے واپس آئے. مولا نے ایک مرتبہ تلوار لے کے حسن کو دی اور کہا کہ حسن بیٹا اب تم جاؤ، اور حسن تو آنن فانن تلوار چلاتے ہوئے چلے تو وہ جو ابھی لشکر اس طرح لڑ رہا تھا وہ سارا کا سارا تتر بتر ہوا، بھاگا، جگہ بنی اور وہاں تک پہنچ گئے جہاں جانا تھا. اب واپس آئے. ایک باپ کے دو بیٹے، باپ نے ایک ٹاسک دونوں کو دیا، ایک نے حاصل کیا دوسرے نے حاصل نہیں کیا، جس نے حاصل نہیں کیا وہ شرمندہ، ماتھے پہ ندامت کا پسینہ آ گیا، لگ رہا ہے کہ بہت ایمبیرسمنٹ فیل کر رہے ہیں. مولا علی نے گلے سے لگا کے کہا محمد حنفیہ شرمندگی کی بات نہیں ہے، ڈونٹ فیل ایمبیرسمنٹ، تیرا اور حسن کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، حسن تو رسول کا بیٹا ہے اور اس وقت وہ رسول کی طاقت دکھا رہا ہے. تو حسن مصطفیٰ نے خالی اپنی بہادری نہیں دکھائی، حسن مصطفیٰ نے پیغمبر کی شجاعت کا تعارف کرایا. پیغمبر کی بہادری ہمارے سامنے آ نہیں پا رہی تھی، پیغمبر کی بہادری تو حالات کی وجہ سے آ نہیں پا رہی تھی کیونکہ مولا موجود تھے. آج حسن مصطفیٰ کے ذریعے، اچھا یہ بھی ایک چھوٹے چھوٹے میرے جملے ایسے ہیں کہ آپ کا دل چاہتا ہوگا کہ کبھی الگ سے مجلس سنیں، آج تو ویسے ہی بہت وقت گزر گیا. شیطان جو آخری جنگ میں تین بار امام زمانہ کی فوج کو شکست دے گا، مارا کس کے ہاتھوں جائے گا؟ امام زمانہ کے ہاتھوں نہیں، رسول خدا کے ہاتھوں. اصل رسول کی شجاعت و بہادری وہاں نظر آئے گی کہ جو شیطان اس طرح سے لڑ رہا ہے، لڑے گا کہ امام کی فوج کو تین بار پریشر میں لائے گا، رسول کی تلوار سے مارا جائے گا، لیکن وہ رسول کی بہادری فیوچر ہے، پاس میں سامنے نہیں آئی ہے. حسن مصطفیٰ نے بتایا تو حسن کا علم رسول نے انٹروڈکشن کرایا خضر کے ذریعے، اور رسول خدا کی بہادری اور طاقت حسن مصطفیٰ نے انٹروڈیوس کرائی جنگ جمل کی اس فتح کے ذریعے سے. لیکن مولا علی کی ایک بڑی خصوصیت ہے، ابھی 19 رمضان آنے والی ہے، شب 19. کہا جاتا ہے دنیا کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ تلوار چلانے والا ٹیبل ٹاکنگ کا ماہر ہو، یعنی بہترین اسپیکر ہو یا عالم ہو، اور جو عالم ہوتا ہے وہ تلوار نہیں چلا سکتا. چنگیز خان ہوگا بہت بڑا جرنیل، نہیں، لیکن علم کے اعتبار سے زیرو. نیوٹن اور آئنسٹائن ہوں گے بہت بڑے عالم، لیکن پریکٹیکل لائف میں تلوار کے حوالے سے زیرو. نہ وقت ہے نہ یہ نقطہ زیادہ واضح کرنے کی ضرورت. کہا گیا کہ علی وہ دنیا کا واحد انسان کہ جہاں ایک طرف تلوار ایسا چلائے کہ اب چنگیز خان اور الیگزینڈر دا گریٹ اور سیزر جیسے بڑے یا نیپولین، ان کا نام لینا ہی علی کی توہین، یہ سب کچھ نہیں. اور دوسری جانب علم ایسا ہے کہ کیا نیوٹن، کیا آئنسٹائن، کیا ارسطو، کیا اسٹیفن ہاکنگ، کیا ان کا نالج، زیرو نظر آتے ہیں، دونوں میں ٹاپ پر. یہی خصوصیت حسن مصطفیٰ میں. یاد رکھیے نالج کے اعتبار سے حسن مصطفیٰ کی نالج، علی کی نالج آپ کو یاد آئے گی، اور بہادری ابھی آپ نے یہ ایک روایت تو یہ سن لی، اور بھی روایتیں. جب جنگ صفین کے، جنگ جمل کے موقع پہ کوفہ شہر علی کے اگینسٹ ہو گیا تھا، علی نے کوفے والوں کو کنوینس کرنے کے لیے ایک ٹیم بھیجی تھی، محمد ابن ابی بکر اور مالک اشتر، وہ گئے. دونوں بڑی عظیم شخصیتیں، فیل ہو گئے. کوفے والے اس کے بات ماننے کو تیار نہیں ہوئے، نہ محمد ابن ابی بکر کامیاب ہوئے نہ مالک اشتر. مولا نے پیچھے سے دوسری ٹیم بھیجی، ہمارے یاسر اور حسن مصطفیٰ. اور پھر آقا حسن نے کوفے میں جا کے جو مسجد میں خطاب کیا اور جیسا لوگوں کو کنوینس کیا، اس ایک آدمی کے علاوہ ابو موسیٰ اشعری جو اپنے آپ کو بہت ہی سینئر اور رسول اللہ کا صحابی سمجھتا تھا، باقی پورا کوفہ حسن کی ایک اسپیچ کی وجہ سے دوبارہ علی والا بن گیا ہے، بہترین اسپیکر، یعنی نہج البلاغہ کا مزہ آ رہا ہے ہم کو. ایک جملہ آپ نے کبھی سنا ہوگا، ایک بار پھر سن لیجیے اور میں ممبر سے اتروں، بہت دیر ہو گئی. جب رسول خدا نے مولا علی کو یمن بھیجا تھا، مولا علی نے ایک رات यमन में जाके स्पीच की थी, पूरे यमन को इतना पक्का शिया बनाए कि सारी दुनिया में अगर उस वक्त से आज तक किसी इलाके में शियत हमेशा स्ट्रांग रही है वो यमन। और इतने बड़े बड़े मासूमीन के सहाबी यमन से हमारे सामने आए, चाहे वो मिकदाद हो, चाहे वो हमारे यासिर हो, एक से एक साहब, एक रात वली के जब हालात पढ़िए। और यही खसूसियत हसन मुश्तबा में थी, एक दफा जब मालिक अश्तर मोहम्मद इब्ने अबी बकर अपनी पूरी कोशिश करके नाकाम हो गए, एक दफा गए मस्जिद में, सबको बुलाया, जो तुम्हारे एतराज है बताओ, सबका जवाब दिया जाएगा, तकरीर ऐसी की। और याद रखिए कि ये सारी खसूसियात सुलह के लिए बहुत जरूरी। जब कोई आदमी सुलहनामे में दस्तखत करता है ना, तो इसके लिए जरूरी है कि यह साबित किया जाए कि इसके पास इल्म है, वरना लोग यही कहेंगे कि भाई वो कम इल्म आदमी था, वो उस ज्यादा बड़े डिप्लोमेटिक मसल मुआविया उसने बातों में फंसा लिया इनको। मुझे याद है ये मैं एक बिल्कुल प्रैक्टिकल मिसाल दे रहा हूं, बहुत मिसालें दे दे के बहुत वक्त मैंने लगा दिया। जिस वक्त आयतुल्लाह सिस्तानी मर्जे बने थे, कोई जानता भी नहीं था, आयतुल्लाह सिस्तानी हमारी रिसेंट तारीख के एक अजीब मर्जे, मरहूम आयतुल्लाह कोई का इंतकाल हुआ, उस वक्त आगा सिस्तानी का स्टेटस था जैसे एक मस्जिद के पेश नमाज, नजफ में तो ऐसे सैकड़ों, मैं तौहीन इनकी नहीं कर रहा हूं, स्टाइल ऐसा बन रहा है वक्त की वजह से, आगा सिस्तानी को कोई जानता ही नहीं था। और ये बातें हो भी रही थी कि हम इनकी मर्जियत को कैसे माने, ये एक मस्जिद का पेश नमाज, एक मदरसे में थोड़े से दर्श देने वाला, ये अमेरिका की पॉलिटिक्स का मुकाबला करेगा, ये सदाम की पॉलिटिक्स का मुकाबला करेगा, बड़े बड़े थिंकर्स अमेरिका की पॉलिटिक्स के सामने फेल हो जाते हैं, वहां एक आदमी को थोड़े डिसीजन लेता, एक थिंक टैंक होता है जिसमें पता नहीं कितनी यूनिवर्सिटियों के कितने पीएचडी स्कॉलर कितने सालों से काम कर रहे होते हैं, ये सिंपल सादा है, बहुत मुत्तकी परहेज़गार, नमाज इनके पीछे पढ़ ले तो ठीक है, यही काफी। लेकिन हालात ने बताया कि लाहौर के एक बहुत मशहूर आलिम दीन है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, चंद साल पहले वो हैरत से पूछा करते थे हु इज सिस्तानी, चंद साल पहले, मैं कोई हजारों साल की बात नहीं कर रहा, वो तो मर जाए ही नहीं, वो तो लोगों ने उनको जबरदस्ती बना दिया क्योंकि इराक में कुछ था ही नहीं। आज वो कह रहे हैं कि पूरी शिया तारीख में ऐसा मर्जी कोई नहीं गुजरा है जिसने शियत के दो अलग धारों को, नजफ और कुम के दो अलग स्कूल ऑफ थॉट को जमा किया, दुनिया की इतनी बड़ी ताकत को इस तरह से शिकस्त दी है, आज सबको मानना पड़ रहा है। तो जब तक के नॉलेज ना हो, लोग कहेंगे वो क्या आगे अमेरिका की बातों में, आगे सद्दाम की बातों में, क्योंकि ये लोग टेबल टॉकिंग के माहिर होते हैं, या अमेरिका हो के जितने जालिम हो, इनके पास जो है जो टीम होती है, 100-100 साल बाद की प्लानिंग अमेरिका के बैठता, और वो प्रेसिडेंट नहीं, वो उनके थिंक टैंक जो उनके यूनिवर्सिटियों के अंदर एक से एक गुर के बारह दीदा बैठे होते हैं। और हमारा एक मर्जी, और फिर आखिर सिस्तानी जैसा अब सबको मानना पड़ा, चुनाचे इनकी मर्जियत तारीख शियत की एक अजीब मर्जियत बन गई कि सब आके इसमें मुत्तफिक हो रहे हैं। तो ये मिसाल इसलिए दी कि हमारे जमाने की मिसाल है, वरना मर्जे कुछ है, इमाम कुछ है। हसन मुश्तबा पे ये एतराज होता, हसन मुश्तबा का इल्म पहले बताया जा रहा है मुख्तलिफ हवालों से, और फिर वो सुलहनामे में दस्तखत हो रहे हैं, ये हमेशा कहा जाए फुल आदमी के पास नॉलेज कम थी, या वो डिप्लोमेसी नहीं जानता था, या वो पॉलिटिक्स नहीं जानता था, इसलिए चक्कर में आ गया। कराची में जब मैं था तो कई शिया मूवमेंट में मैंने हिस्सा लिया, मुझे मालूम है कि गवर्नमेंट जो है ना, खुद ये हमारी गवर्नमेंट अमेरिका नहीं, इनके ब्यूरोक्रेट्स कितने चालाक और होशियार होते हैं, लफ्ज खेलते हैं। अभी आपके सामने तहरीके तालिबान क्या हुआ, तहरीके लबैक, उनके साथ जो मुआहिदा हुआ, अल्फाज से खेलना ये इनको आता है। हसन मुश्तबा इल्म इसलिए सामने आया था कि सुलो हसन जब तुम्हारे सामने आए तो तुम्हें पता हो कि इसके पीछे कितना इल्म था। यही वजह है कि मुआविया ने हमेशा अपनी गलती मानी कि मैंने दुनिया की सबसे बड़ी गलती और ब्लंडर यह किया कि सुलहनामे पे दस्तखत कर दिए। लेकिन अब ये जब गलती होगी तो क्या हुआ, जितना सख्त प्रोपेगेंडा हसन के खिलाफ हुआ किसी के खिलाफ नहीं। ये याद रखिए, आइम्मा ताहिरीन हर इमाम पर बहुत सारे एतराजात किए गए, किसी के कैरेक्टर को डैमेज नहीं किया गया, हसन मुश्तबा के कैरेक्टर को डैमेज किया गया। एक बार कहा गया कि मुजिल्लुल मोमिनीन, इन्होंने मोमिनों को जलील कर दिया। एक बार ये झूठी हदीस बनाई गई। बस अब मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा क्योंकि वक्त बहुत गुजर गया, रोजा मेरा भी था आपका भी था। मैं आखिरी जुमले पे आ गया, एक हदीस बनाई। आजकल मेलबर्न में एक रवाज निकला है कि आलिम उसे कहते हैं जो आलिम ना हो ट्रांसलेटर, यानी कोई अरबी किताब की हदीस है उसको ट्रांसलेट करके आपको सुना दे कि भाई ये किताब में लिखा हुआ। ये को थोड़ी आलिम की पहचान है, आलिम है कि हदीस है तो देखे कि सही है कि गलत है, किस हाल में है, किस माहौल में है, किस कॉन्टेक्स्ट में है, पूरी हदीस है या आधी हदीस। वो जो फला किताब में हदीस लिखी, अरे वो किताब उठा के आप गूगल के, और एक से एक गूगल से बेहतर सॉफ्टवेयर आ गए, वो किताब आप उसके अंदर ले जाइए, डाउनलोड कीजिए और उसके बाद उस सॉफ्टवेयर में जाइए, पूरी किताब का आपको इंग्लिश में तर्जुमा मिल जाएगा। इंग्लिश नहीं, उर्दू में, उर्दू नहीं गुजराती में, गुजराती नहीं पंजाबी में, और कोई जबान वाला है हर जबान में। मुझे वो सॉफ्टवेयर मिला था अमेरिका में जिसमें 1000 डिफरेंट लैंग्वेज में तर्जुमा हो सकता है हर चीज का। ये कोई थोड़ी आलिम का काम है। जो किताब मेरे पास है उसमें ये लिखा हुआ, क्या लिखा है आगे पीछे देखो तो सही। अब मसलन एक हदीस बहुत पढ़ी जाती थी एक जमाने में हमारे मेंबरों से, अब कम हो गई, अब बंद हो गई, लेकिन दूसरे पढ़ते हैं। मौला अली एक जमाने में कूफे के मेंबर पे गए और कहा, खबरदार अपनी बेटियों की शादी हसन से ना करना, فَإِنَّهُ رَجُلٌ مِتْلَاقٌ, क्योंकि ये बहुत तलाक देने वाला है। मितलाक अरबी का लफ्ज है जिसका मतलब है बहुत तलाक देने वाला। क्या इसलिए कि हसन मुश्तबा हर रात को एक नई शादी करते थे अगली सुबह तलाक, हर रात को एक नई शादी करते अगली सुबह तलाक। मौला को कहना पड़ा, खबरदार कूफे वालों हसन को बेटी ना देना, तुम्हारी बेटियों को अगली सुबह तलाक मिल जाएगी। अच्छा, बिल्कुल वही एतराज है जो पैगंबर पर, सीरत रसूल और सीरत हसन। अब बात खत्म कीजिए, बाकी इंशाल्लाह अगर जिंदा रहा तो कुछ बातें शहादत के मजलिसों में आ जाएंगी, बात नामुकम्मल छोड़ रहा हूं, लेकिन क्या करो। पैगंबर पर भी जो सबसे बड़ा एतराज था जो आज तक चला रहा, अल्लाह मालूम आप लोग यूट्यूब के वो क्लिप देखते हैं कि नहीं, या इंटरनेट की वेबसाइट पर जाते हैं कि नहीं, आपका खून खोल जाए, ये एतराज। ये पैगंबर जो थे वो औरतों के बहुत शौकीन थे, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। पैगंबर की शादियां, पिछली तकरीर पैगंबर की एक शादी के बारे में थी, खदीजा, लेकिन पैगंबर की शादियां कितना इंटरेस्टिंग मौजू, और कैसी कैसी हदीसें। खास तौर पे दो औरतों से पैगंबर की शादी थे, बहुत बड़ा इशू है। ये दोनों क्रिश्चियन थी, दोनों बहुत खूबसूरत थी, अभी वो मेरी माँ है, माँ के बारे में जुमले कहना कितना मुश्किल है, लेकिन चूंकि ये इसके बगैर आप समझेंगे नहीं, तो इतना आज तक जो पैगंबर पे बहुत ज्यादा तौहीन आमेज और मजे ले लेके इतराज। एक यहूदी की बेटी जनाब सफिया बिनते हई, और एक ईसाई औरत मारिया कब्तिया जो मिस्र से आई थी और क्लियोपेट्रा का हुस्न लेके आई थी, इसके हवाले से पैगंबर पे इतराज। औरतों के शौकीन थे, उनको तो बस शादियां ही करना था, यही एतराज सेम हसन मुश्तबा पर हुआ। ये आका अली पे एतराज नहीं हुआ, आका हुसैन पे एतराज नहीं हुआ, किसी और इमाम पे नहीं हुआ, दूसरे एतराज हुए होंगे, लेकिन ये जो कैरेक्टर के ऊपर हमला हो रहा है यहां पर भी सीरत में हसन अपने नाना रसूल खुदा के मुशाबे। इसीलिए मैंने कहा कि हसन रसूल से है और रसूल हसन से, और हसन की विलादत इस्लाम में पूरा सिस्टम बना गई। उफ़ो, कितनी दफा कहूंगा कि मुझे मिंबर से उतरना। बच्चे की विलादत के बाद 10 चीजें सुन्नत, ये पूरा सिस्टम हसन की विलादत के बाद बना। मौला अली की विलादत पे 10 चीजें सामने नहीं आई, शहजादी फातिमा की विलादत पे नहीं आई, बच्चे की विलादत के मौके पे 10 चीजें सुन्नत, जिनमें से एक सुन्नत में हम इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं जिसका हमको नुकसान उठाना पड़ रहा। पैगंबर का एक जुमला है, दूसरी सुन्नत जो है, वक्त नहीं है इसलिए मैं, दूसरी सुन्नत पे अमल करो, तुम्हारा बच्चा शैतान के बहकावे से महफूज रहेगा, कैरेक्टर। छठी सुन्नत पर अमल करो, छोटा जो शैतान एक है जो तुम्हारे लिए जिस्मानी प्रॉब्लम लेके आता है, बीमार हो गए, फाके आ गए, उससे तुम्हारा बच्चा बचेगा, वो बड़ा शैतान है, दूसरी सुन्नत से बचता है। छठा सुन्नत है उससे छोटे शैतान से बचता। अच्छा, पैगंबर की एक हदीस में गूंगा शैतान भी है, वो इंशाल्लाह आप सुनेंगे सैटरडे से। गूंगा शैतान और काना दज्जाल, ये दो मौजू बनेंगे मेरी चार तकारीर के, इंशाल्लाह बात वहां होगी। तो वो 10 सुन्नत जो आए, जिनमें से दो तो बच्चों को शैतान से बचाने वाली, वो इमाम हसन की विलादत पर है। पूरा एक सिस्टम आया, बहुत एहसानात है हसन मुश्तबा के हमारे बच्चों पर भी, वो पूरा निजाम बना के दिया। اور پھر جیسے زہرا نے خوشی منائی پورے عالم اسلام نے خوشی منائی. اور اسی لیے اللہ نے حسن مصطفیٰ کو ایک ایسی فضیلت دی جو اس کائنات کی تاریخ میں حسن سے پہلے کسی کو نہیں ملی, نہ آدم کو, نہ نوح کو, نہ ابراہیم کو, نہ موسیٰ کو, نہ عیسیٰ کو, نہ محمد مصطفیٰ کو, نہ علی مرتضیٰ کو, نہ خدیجہ, نہ فاطمہ زہرا کو. ایک ایسی خصوصیت جو کسی کو نہیں ملی حسن سے پہلے, اور وہ یہ کہ حسن اس کائنات کا پہلا معصوم ہے جس کا باپ بھی معصوم ہے اور جس کی ماں بھی معصوم ہے. اس سے پہلے آپ کو مثالیں ملیں گی کہ باپ معصوم ہے, اسماعیل کا باپ ابراہیم معصوم ہے, سلیمان کا باپ داؤد معصوم ہے, دونوں کی ماں معصوم نہیں. مثال ملے گی ماں معصومہ ہے, عیسیٰ کی ماں مریم معصومہ ہے, باپ ہی نہیں. حتیٰ پیغمبر اور مولا علی اور فاطمہ زہرا, یا باپ معصوم ہے ماں معصومہ, یا ماں معصومہ باپ معصوم نہیں ہے, دونوں معصوم ہو. کائنات کی تاریخ میں پہلا حسن مصطفیٰ ہے کہ جس کا بابا علی مرتضیٰ بھی معصوم ہے, جس کی ماں فاطمہ زہرا بھی معصوم ہے. اور ایسا معصوم جب اس دنیا میں آتا ہے تو اپنے ساتھ جو تاج لے کر آتا ہے اس پہ لکھا ہے سید شباب اہل الجنہ. یہ سردار بن کے آیا جوانان جنت کا. تو پروردگارا اس خوشی کا واسطہ, سارا مدینہ خوشی منا رہا, سارا عالم اسلام خوشی منا رہا, فاطمہ زہرا خوشی منا رہی, اہل بیت کے گھر کی یہ پہلی خوشی عید الزہرا ہے, جنت خوشی منا رہی اس لیے کہ اس کا سردار آ چکا ہے. اسی حسن مصطفیٰ کی ولادت کی اس خوشی کا واسطہ جو مومنین اور مومنات آج کی اس محفل میں آ گئے ہیں, ان کو, ان کی اولادوں کو, ان کے گھروں کو, ان کے گھر والوں کو, ان کی روزی کے ذرائع کو ہر آفت و پریشانی سے بے حق حسن مصطفیٰ محفوظ فرما. پروردگارا حسن مصطفیٰ جوانان جنت کے سردار, ہمارے جتنے مرحوم دنیا سے گئے ہیں, خاص طور پر جو لوگ آج کی محفل میں بیٹھے ہیں, خواتین و حضرات, ان کے خاندان کے تمام مرحومین, اور جو آج کے افطار کے اسپانسر تھے ہمارے کانودر کے برادران, ان سب کے خاندان کے تمام مرحومین کو اعلی علیین میں حسن مصطفیٰ کا ساتھ اور جنت میں انہی کی سرداری نصیب فرما. پروردگارا دسترخوان حسن مصطفیٰ کا واسطہ صاحبان ایمان کو روزی کے ہر امتحان سے محفوظ فرما. خداوندہ حسن مصطفیٰ کی بیماری جو تین دن یتیموں, مسکینوں, اسیر کو روٹیاں دی گئیں, وہ حسنین کی بیماری کے تصدق میں تھی نا. حسن مصطفیٰ کی بیماری, تو نے سورہ دہر نازل کیا, اس وقت جتنے مومن اور مومنات بیمار, خاص طور پر یہ کووڈ کی وجہ سے سنا ہندوستان کی حالت بہت خراب ہے, اور سنا ہے پاکستان میں بھی یہ خرابی بڑھ رہی ہے, اور سنا ہے کہ عرب دنیا میں عراق بھی مرکز بن گیا ہے کووڈ کا. خدا بندہ جتنے کووڈ میں مبتلا ہیں, چاہے مومن ہو, چاہے مسلمان ہو, چاہے ایتھسٹ ہو, لیکن ہیں تو تیرے بندے اور حسن کی امامت کے اندر ہیں, ان سب کو شفا کاملہ عطا فرما, اور ہم سب کو سیرت حسن مصطفیٰ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما, اور حسن کے جہاد کو مکمل کرنے, اور حسن پہ ڈھائے جانے والے مظالم کے انتقام کے لیے حسن ہی کے وارث و فرزند امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیشہ کی طرح کیک کٹنگ کی سیرومنی میں نہیں ہوگی, لیکن اس سے پہلے ایک سورہ فاتحہ ہے, اور آقا حسن کی زیارت پڑھائی جائے گی, مخصوص زیارت چھوٹی سی ہے, اور پھر وہ کیک کٹنگ ہوگی. تو ایک سورہ فاتحہ کے التماس ہے تمام مرحومین, ماہ مبارک کے رمضان تمام مرحومین, خاص طور پہ جو لوگ آج کی اس تقریر میں موجود ہیں جشن میں, ان کے خاندان کے تمام مرحومین, آج کے افطار کے اسپانسر ہمارے کانودر گروپ کے مومنین, ان کے تمام مرحومین, اور ایک نام میرے پاس آیا ہے مرحومہ مرضیہ وکالیہ بنت راج محمد دھنالی والا, خاص طور پہ ان کے اور باقی سب کے نام آ گئے, ان سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اب یہ زیارت ایک ساتھ ہو رہی ہے, جیسے ہر پروگرام کے آخر میں ہوتی ہے, قبلہ رخ, قبلہ اس طرف ہے, خاص پہلے تو امام حسن مشتبہ کی زیارت پڑھ رہا ہوں قربتاً الی اللہ. السلام علیک یا ابن رسول رب العالمین، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہرا، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا صفۃ اللہ، السلام علیک یا امین اللہ، السلام علیک یا حجت اللہ، السلام علیک یا نور اللہ، السلام علیک یا صراط اللہ، السلام علیک یا بیان حکم اللہ، السلام علیک یا ناصر دین اللہ، السلام علیک ایہا السید الزکی البر الوفی القائم الامین العالم بالتاویل الحادی المہدی الطاہر الزکی التقی النقی الحق الحقیق الشہید الصدیق، السلام علیک یا ابا محمد الحسن ابن علی ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا ابا عبد اللہ، السلام علیک وعلى جدک وابیک وامک واخیک واولادک واصحابک ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا غریب الغرباء یا ابا الحسن علی ابن موسی الرضا، السلام علیک وعلى ابائک وابنائک واختک فاطمہ القمیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا مولانا یا صاحب الاسر والزمان، السلام علیک یا شریک القرآن الامان الامان یا مولانا من فتنة الزمان، اجل اللہ تعالی ظهورک وسهل اللہ تعالی نورک واجعل لنا من انصارک، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته.